अब जैसे ही आहान ने बच्चों जैसी शक्ल बनाकर रौनक से ये सब कुछ कहा, रौनक के सर में दर्द होने लगा था अब आगे, और वो आहान की ओर गुस्से से घूरते हुए बोली, अपनी फालतू की बकवास बंद करो, मैं शादी और तुमसे नॉन एवर, मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मिस्टर आहान सिंघानिया, भूल जाओ, तुम ये सब कुछ क्यों किया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, समझे तुम? और ये बताओ, तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मैं मर ही जाती ना, तो मर जाने देते मुझे, कम से कम मुझ पर दाग तो नहीं लगाते तुम। अब जैसे ही रौनक ने अपनी भड़ास निकाली, आहान को भी अब गुस्सा आ गया। अचानक रौनक के बालों को वापस पकड़कर गुस्से से बौखलाई आवाज़ में बोला, जस्ट शट अप, जस्ट शट योर माउथ, आइंदा अगर तुमने कभी मरने की बातें भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? तुम सिर्फ, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीना है, मेरे लिए जीना है, और सच बात तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, इस बात का मुझे एहसास नहीं था, लेकिन जब तुम राधिका दीदी के साथ इस घर को छोड़कर गई, तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती रही, और मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अब जैसे ही आहान ने ये इकरार किया, रौनक को उसकी बातें बिल्कुल यूजलेस लग रही थीं, और वो चिल्लाते हुए बोली, बंद करो अपनी फालतू की बातें, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेचारी लड़की पर हमदर्दी दिखा रहे हो जिसकी इज्जत चली गई है ना, तुम सिर्फ मुझ पर हमदर्दी दिखा रहे हो और तरस खाकर शादी भी करना चाहते हो। एक बात याद रख लो मिस्टर आहान सिंघानिया, मुझे हमदर्दी और तरस दोनों से ही नफरत है, समझे तुम? अब तो आहान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रौनक को हैंडल करे तो करे कैसे, कैसे उसे इस बात का यकीन दिलाए कि वो ये सब कुछ होने से पहले ही उससे प्यार करता था, लेकिन अब तो रौनक को उसका प्यार भी सिर्फ हमदर्दी और दिखावा लग रहा था। वेल, आहान ने गहरी गहरी और लंबी सांस ली और खाने की थाली हाथ में लेकर रौनक को खाना खाने के लिए कहने लगा, लेकिन रौनक ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। अब आहान ने अचानक रौनक के मुंह को कसकर पकड़ा और उसका मुंह जबरदस्ती खोलते हुए उसमें खाना खाने का एक निवाला डाल दिया और बोला, ये सारी अकड़ और एटीट्यूड किसी और को दिखाना, मिसेस रौनक आहान सिंघानिया, और बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरी होगी और मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा हूँ, समझी तुम? मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। ये बोलकर आहान ने फटाफट से रौनक को एक के बाद एक खाने के निवाले खिलाना शुरू कर दिया था और रौनक को बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। रौनक बीच बीच में बोलना चाहती थी, लेकिन आहान ने उसे बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया, और जब उसे लगा कि हाँ रौनक ने एक रोटी खा ली है, तब उसने उसे फटाफट से पानी पिलाया, और इससे पहले कि रौनक उसकी पिटाई करना शुरू कर देती, आहान इस तरह से वहां से भागा जैसे कि उसके पीछे कोई भूत लग गया हो। रौनक आहान को जाते हुए देखकर छल्ला कर रह गई थी। उसने अपने बालों को कसकर नोच लिया और बोली, मैं इस छछुंदर से तो किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी, आई जस्ट हेट हिम। ये कहते हुए रौनक एक बार फिर बेड पर लेट गई थी और चादर से उसने अपने मुंह को कवर कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अविनाश ने आस्था के वीडियो कॉल पर उसके दादाजी से बात करवा दी थी। आस्था को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच था, ये हकीकत है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ एक सपने के जैसा ही लग रहा था। आस्था की आधे से ज्यादा जन्म मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री थी वो डॉक्टर की, और आस्था उस डॉक्टर को हर हाल में मारना चाहती थी, सोच रहा था। फाइनली उसने आस्था को तो खोज निकाला था, अब उसका सिर्फ एक मकसद रह गया था, सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर का जान लेना। इसके लिए उसने अब डिसीजन लिया था कि अब वो डॉक्टर की जान ले लेगा, क्योंकि अब अविनाश इस बात से बेफिक्र हो गया था कि उसकी बहन को कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि अरमान सिंघानिया के बारे में कौन नहीं जानता था। इस शहर में आते ही उसे अरमान के बारे में सारी चीज पता चल चुकी थी कि अरमान सिंघानिया शहर का कितना ज्यादा पावरफुल आदमी है, और इतनी पावरफुल आदमी की बीवी को भला कौन टच कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आस्था की तरफ से अविनाश बेफिक्र सा हो गया था, और उसने अब डिसीजन लिया था राजवीर जिंदल को खोज निकालने का, क्योंकि अविनाश उसे, डॉक्टर को, अच्छी तरह से पहचानता था। राजवीर जिंदल ने उसकी आंखों के सामने उसकी मां का गला काटा था, तो भला वो उसे कैसे भूल सकता था। इसलिए अब अविनाश ने राजवीर जिंदल को ढूंढकर मारने का फैसला कर लिया था। वेल, अभी हंसी खुशी के माहौल में बैठे हुए थे। अरमान बार बार आस्था की तरफ देख रहा था। आस्था का अपने भाई को पाकर खुश हो रही थी, कहीं न कहीं अरमान को भी खुशी हो रही थी, क्योंकि अरमान तो यही चाहता था कि आस्था बस खुश रहे, और आस्था की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वेल, अब क्योंकि रात हो गई थी और दादाजी ने अविनाश और एंजल दोनों को ही सिंघानिया मेंशन में ही रोक लिया था, क्योंकि वे उनके मेहमान थे। आखिरकार आस्था के रिश्तेदार आस्था का भाई था और सिंघानिया मेंशन का मेहमान था, तो भला इस तरह से वो अविनाश को कैसे जाने दे सकते थे। इतना ही नहीं, नानी माँ अभी भी अविनाश से थोड़ा सा कटी कटी सी थी। नानी माँ अविनाश से बहुत कम बात कर रही थी, ये अविनाश समझ चुका था। कुछ तो है जो नानी माँ को परेशान कर रहा है, और जब नानी माँ ने उसे पहले दिन देखा था और उसे पहचान लिया था, तो नानी माँ ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्यों सच नहीं बताया? तो बस इसीलिए अभी अविनाश नानी माँ के पास गया और उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराकर उनकी ओर देखकर सॉफ्ट वॉइस में बोला, क्या बात है नानी माँ, कोई ना कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। मैं आपके लिए गोरी जैसा ही हूँ, प्लीज आप मुझे बता सकती हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि अगर मैं गोरी की जिंदगी में आ गया हूँ तो गोरी को आपसे दूर ले जाऊंगा? नहीं नहीं नानी माँ, ये आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। अरे, आपने हमारी गोरी को एक नई जिंदगी दी है, उसका ख्याल रखा है, उसकी जान बचाई है। आपका तो मैं जितना शुक्रगुजार हूँ वो भी बहुत ज्यादा कम है। अब जैसे ही इन द लास्ट वाली लाइन अविनाश ने ये बोली कि आपने गोरी की जान बचाई है, सभी के कान खड़े हो गए थे, स्पेशली अरमान सिंघानिया के। और अरमान बड़े ही ध्यान से अविनाश की कॉन्वर्सेशन सुनने लगा था। तब नानीमा अविनाश की ओर देखकर बोली, हमने उस पर कोई एहसान नहीं किया। मेरे बेटे और दामाद के जाने के बाद गोरी बिटिया सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जैसे ही नानीमा ने ये कहा, अचानक अविनाश ने भावुक होकर नानीमा के हाथों को चूम लिया था, उन्हें गले से लगा लिया और इमोशनल होकर बोला, आप महान हैं नानीमा, आप महान हैं। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। रियली नानीमा, यू आर टू गुड। और हाँ, आप ये मत समझिए कि मेरे आने के बाद आपकी गोरी आपसे अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपकी गोरी के साथ अब आपको एक पोता भी मिल गया है, अविनाश, जो हमेशा आपके पास रहेगा। अब जैसे ही अविनाश ने ये बताया, नानीमा जिस बात को लेकर डर रही थी उनका डर एक मिनट में खत्म हो चुका था। नानीमा को तो लगा था कि अगर अविनाश आस्था का सचमुच ही भाई है तो वो उसे उससे दूर कर देगा, लेकिन ये क्या, नानीमा को तो आस्था के साथ साथ अविनाश भी मिल रहा था। नानीमा ने तुरंत अविनाश के माथे को चूम लिया था और खुश होते हुए बोली, बेटा तुमने तो एक ही झटके में मेरी सारी परेशानी दूर कर दी, कान्हा जी तुम्हें हमेशा खुश रखें। वहीं अरमान अब वहां आकर बैठ गया और अविनाश की ओर देखकर सीरियस आवाज में बोला, एक बात बताओ मिस्टर रघुवंशी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आस्था की जान किसने किससे बचाई, आस्था को किससे खतरा था?
अब जैसे ही अरमान ने सीधे सीधे ये सवाल किया, अविनाश थोड़ा सक पका गया था, क्योंकि उसने अपने दादाजी से वादा किया था कि उसके बारे में कभी वो ना तो किसी से जिक्र करेगा, ना उसके बारे में सोचेगा, ना उसकी जान लेगा। अब अरमान के सवाल करने पर थोड़ा सा बौखला गया था। तभी नानीमा बात बदलते हुए बोली, अरे दामाद जी, क्योंकि नानीमा डॉक्टर को आस्था के जरिए जानती थीं कि वो कितना खतरनाक है, और वो ये भी जानती थीं कि जरूर अविनाश भी उसके बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा, इसीलिए वो इस तरह से अटक रहा है और शायद वो अभी अरमान को कुछ नहीं बताना चाहता है। इसीलिए नानीमा बोली, अरे बच्चा, वो उस टाइम पर जिस टाइम पर आस्था के माता पिता की मौत हुई थी, तब आस्था बहुत बीमार हो गई थी, और आपको पता है ना उसे कितनी ज़्यादा पैनिक अटैक आते थे, तो बस ये अविनाश बेटा उसी के बात कर रहे हैं कि हमने उसकी जान बचाई है, हमने उसका बहुत इलाज करवाया। अब जैसे ही नानीमा ने इस तरह से बात पलटी, अब जाकर अरमान ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी। वेल, अभी सब बातें कर ही रहे थे कि और तभी सबकी नज़र सीढ़ियों पर उल्टा सीधा दौड़कर भागते आते हुए आहान पर पड़ती है। आहान को यूं देखकर सब हैरान हो गए और सब खड़े होकर तुरंत दादाजी उसके पास जाकर बोले, अरे आहान बेटा, ये क्या हुआ तुझे, और तू इतनी तेजी से सीढ़ियों पर से क्यों दौड़ रहा है, तू गिर जाएगा, तुझे चोट लग जाएगी। तब आहान खुद की सांसों को काबू में करते हुए बोला, अरे मत पूछो दादाजी, मत पूछो। तब दादाजी हैरान होकर बोले, बेटा तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो, मानो कि तेरे पीछे कोई चूहा लग गया हो। तब आहान बच्चों जैसी शक्ल बनाकर बोला, दादाजी चूहा नहीं था, शेरनी थी, अगर वो मुझे पकड़ लेती तो एक बार फिर से मेरी धुलाई कर देती। अब सबके सब चौंक गए कि आखिरकार आहान कहना क्या चाह रहा है। तभी ध्रुव वहां आगे आया और आहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये कैसी बात कर रहा है यार तू, तेरी पिटाई कर देती, कौन तेरी पिटाई कर देती। तब आहान बातों बातों में भूल गया, अरे वही शेरनी रौनक हवा हवाई जिसने मुझे पहले भी मारा था। तब ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, लेकिन यार तूने तो बोला था कि तुझे 10 से 12 लोगों ने मिलकर मारा था, आज तू कह रहा है तुझे रौनक ने मारा था। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आहान ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और सब की ओर देखने लगा था। सब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहान को ही देख रहे थे। तब दादाजी शक भरी नजरों से देखकर बोले, मतलब कहना क्या चाहता है, उस दिन जब आहान को कुछ गुंडों ने मारा था, असल में उसे सिर्फ रौनक बिटिया ने पिटा था। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, ध्रुव ने अपनी पलकें झपका ली थीं। अब आहान तुरंत शर्मिंदगी से दादाजी की ओर देखने लगा था। दादाजी एकदम क्रोधित चेहरे के साथ आहान को देख रहे थे और उसकी ओर घूरते हुए देखकर बोले, सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था, हम तो घबरा गए थे कि कहीं तेरे साथ कोई हादसा न हो गया हो, और तुझ पर कितने सारे लोगों ने हमला किया वो बताओ हमें, सच सच क्या बात है। तब आहान अपनी बच्चों वाली शक्ल बनाकर बोला, वो असल में दादाजी मैंने झूठ बोला था, उस दिन मुझे 10-12 लड़कों ने नहीं मारा था, मुझे रौनक ने ही मारा था। अब जैसे ही आहान ने दादाजी के गुस्से को देखकर सारा सच बताया, अब तो दादाजी ने एक नज़र आहान को गुस्से वाली नज़रों से देखा और अगले ही पर ठहाके लगाकर हंस दिए। इतना ही नहीं, जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे सभी हंसने लगे थे। हमारे रश्मि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, आस्था भी खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। कहीं ना कहीं आकाश और अरमान दोनों ही आस्था और रश्मि दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे थे। वहीं आहान ने अब रोने वाली शक्ल बना ली थी और बनावटी रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, मुझे पता था आप सब मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाओगे, इसीलिए मैंने 10-12 लड़कों का नाम लिया था। वो एक लड़की थी इसीलिए मैंने छोड़ दिया, वरना आप लोग तो जानते ही हैं ना कि आहान सिंघानिया का पंच कितना ज्यादा दमदार और मजबूत है। तब दादाजी बोले, हाँ हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तेरा पंच कितना ज्यादा मजबूत है। अब बच्ची को तूने ज्यादा तो तंग नहीं किया ना? तब आहान ने नामे अपनी गर्दन हिला दी थी और तभी नानी माँ बोली, अच्छा भाई साहब, अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारे साथ हमारा पोता अविनाश भी गांव जाएगा, इसीलिए आप सब तैयारी करें और कल ही हम गांव के लिए निकलेंगे। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, सभी के सभी मुस्कुरा दिए थे। कहीं ना कहीं आहान, ध्रुव तो इस ट्रिप को लेकर बेहद एक्साइटेड थे, वहीं अविनाश भी नानी माँ के साथ चलने पर मना नहीं कर पाया था। वैसे भी वो थोड़ा वक्त गोरी के साथ यानी आस्था के साथ बिताना चाहता था, उसके बाद वो अपने असली काम पर लगना चाहता था। उसने अब डिसीजन ले लिया था कि अगर अब वो शहर में आ ही गया है तो वो अपना लगे हाथ दूसरा काम यानी कि राजवीर जिंदल को खत्म करने का काम भी कर ही देगा।